ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 नवंबर 2021 के लिए है। विषय आदम और प्रतीत आदमी। स्वर्णपथ इफ्सियों। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उत्तरदेय अध्ययन यशाया भजन संहिता। हे सेऊन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलम, अपने शोभामान वस्त्र पहन ले, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलम उठ, हे सेऊन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे। हे यरूशलम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। उसने यरूशलम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पुत्र भुजा प्रगत की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धार्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। परंतु मैं तो धार्मी होकर तेरे मुख के दर्शन करूंगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रींगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रींगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उत्पत्ति। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, तो भी कोहर पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदमी जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब देश में अदन देश में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और वो सो गया। उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। उत्पत्ति। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। अय्यूब। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है, इस कारण उसने अपना मुंह फेर लिया। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौट आया, और वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्य अद्विक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वही जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यूहन्ना। फरीसियों में से निकोदिमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर के मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। इफ़सियों, इसलिए मैं ये कहता हूँ, अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य आदत को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ग्रंथियों, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित पुरानी बना और अंतम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देख, मैं तुझसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। रोमियो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तेज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला करीदा और प्याकड़पन और ना व्याभिचार और लुचपन में और ना झगड़े और तह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। योहन्ना, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रगत नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वराय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनिमोति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत बीमार पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो कुछ भी मनुष्य के पाप को दर्शाता है या भगवान के विपरीत या भगवान की अनुपस्थिति आदम का सपना है, जो ना तो मन है और ना ही मनुष्य है, क्योंकि ये पिता की भीख नहीं है। आदम नाम झूठे ढंग का प्रतिनिधित्व करता है कि जीवन शाश्वत नहीं है लेकिन शुरुआत और अंत है, कि अनंत पारिमित में प्रवेश करता है, वो बुद्धि अबुद्धि में प्रवेश करती है और वो आत्मा भावतिक अर्थों में बसता है। उस अमर मन का परिणाम होता है एक नश्वर मन में पदार्थ, एक ईश्वर और निर्माता ने जो बनाया उसमें प्रवेश किया और फिर पदार्थ की नास्तिकता में गायब हो गया। ये त्रुटि स्वयं त्रुटि साबित होती है, इसका जीवन जीवन नहीं बल्कि एक अस्तित्व का कंशंक गलत अर्थ है जो मृत्यु में समाप्त होता है। मनुष्य को भावतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भावतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। त्रुटि के भयानक दिन, कालापन और अराजकता के ऊपर सत्य की आवाज अभी भी कहती है, आदम तुम कहाँ हो, चेतना तुम कहाँ हो, क्या आप इस विश्वास में निवास करते हैं कि मन भावतिक है और ये बुराई मन है, या आपके जीवित विश्वास में कला है कि एक ईश्वर है और उसकी आज्ञा रख सकता है। जब तक सबक नहीं सिखाया जाता कि भगवान एकमात्र मनुष्यासी आदमी है, तब तक नश्वर विश्वास डर जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत में था और मांग से छिप जाएगा। आप कहाँ है, ये भयानक मांग, आदम तुम कहाँ हो, सर, हृदय, पेट, रक्त, नसों आदि से प्रवेश द्वारा उज्जत हुआ है। लो, यहाँ मैं हूँ, शरीर में खुशी और जीवन की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन केवल एक भ्रम ढूंढ रहा हूँ, झूठे दावों का समर्थन, झूठी खुशी, दर्द, पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए। नश्वर अस्तित्व एक सपना है, नश्वर अस्तित्व की कोई वास्तविक इकाई नहीं है, लेकिन सही ये है, आत्मा वो अहंकार है जो कभी सपने नहीं देखता, लेकिन सभी चीज़ों को समझाता है, जो कभी गलती नहीं करता और जो हमेशा सुचेत रहता है, जो कभी विश्वास नहीं करता लेकिन जानता है, जो ना कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है। आध्यात्मिक मनुष्य इस अहंकार की समानता है। अब मैं पूछता हूँ, क्या नींद के सपने की तुलना में नश्वर अस्तित्व के जागने के सपने में कोई और वास्तविकता है? यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ भी एक नश्वर आदमी प्रतीत होता है वो एक नश्वर सपना है। ये नश्वर सपने मानव मूल के हैं, परमात्मा के नहीं। ये गलत विश्वास कि आत्मा अब मामले में डूबी हुई है, भविष्य के कुछ समय में इससे मुक्ति मिलेगी, ये विश्वास अकेला नश्वर है। आत्मा ईश्वर कभी नहीं उगता है, लेकिन कल वही है और आज है और हमेशा के लिए है। यदि मन भगवान त्रुटि पैदा करता है, तो वो त्रुटि दिव्य मन में मौजूद होनी चाहिए, और त्रुटि की ये धारणा देवता की पूर्णता को नष्ट कर देगी। क्या क्रिश्चियन साइंस विरोधाभासी है? क्या सृष्टि का ईश्वरीय सिद्धांत गलत है? क्या ईश्वर के पास मन की घोषणा करने का कोई विज्ञान नहीं है, जबकि पदार्थ का संचालन अचूक बुद्धि से होता है? पृथ्वी से कोहर छा गया, ये भौतिक आधार पर अच्छे के विचार से शुरू होने वाली त्रुटि का प्रतिनिधित्व है। ये मानता है कि ईश्वर और मनुष्य केवल भावतिक इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होते हैं, हालांकि भावतिक इंद्रियां आत्मा या आध्यात्मिक विचार का कोई संज्ञान नहीं ले सकती हैं। नश्वर जीवन में मानव अनुभव जो एक अंडे से शुरू होता है, अय्यूब के साथ मेल खाता है, जो ये कहता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा रहता है। नश्वर को भावतिक जीवन की इस धारणा से समग्र रूप से उभरना चाहिए। उन्हें मसीही ज्ञान के साथ अपने गोले खोलने चाहिए और बाहर और ऊपर की ओर देखना चाहिए। भावतिक स्रोत से दुख, पाप और मृत्यु के लिए कोई उपाय नहीं बहता है। मुक्ति शक्ति के लिए वो जो बुराई करते हैं वो अंडे में नहीं है और ना ही धूल में है। इस प्रकार ये सीख लिया जाता है कि पदार्थ नश्वर मान की अभिव्यक्ति है, और जब पूर्ण और शाश्वत मान को समझा जाता है तो वो पदार्थ हमेशा अपने दावों को छोड़ देता है। दिव्य विज्ञान इस भ्रम की जड़ पर कुल्हाड़ी मारता है कि जीवन या मन भावतिक शरीर में है या उससे बनता है, और विज्ञान अनंत में इस भ्रम को सभी त्रुटि के आत्म विनाश और विज्ञान के जीवन की समझदार समझ के माध्यम नष्ट कर देगा। जब नश्वर मन की धुंध वशप्त हो जाएगी, तब श्राप दूर हो जाएगा जो स्त्री से कहता है, दुख में तू संतान उत्पन्न करेगी। ईश्वरीय विज्ञान सत्य के प्रकाश के साथ त्रुटि के बादलों को वापस ले जाता है और मनुष्य पर पर्दा उठाता है, जैसे कि कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरने वाला नहीं, लेकिन अपने निर्माता के साथ सह अस्तित्व के रूप में रहता है। और उसने कहा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य के परमित क्षमता के भ्रूण को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के संतान पर शरीर में रहे। तो इस नश्वर सपने से जागृति या भ्रम हमें स्वस्थ पवित्रता और अमरता में लाएंगे। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है, सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता है और बीमारों को ठीक करता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वर, ईश्वरीय सिद्धांत और प्रेम के माध्यम से आता है, जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। भावतिकता और आध्यात्मिक विपरीत के माध्यम से यहाँ तक कि मसीह सत्य के माध्यम से भी मनुष्य दिव्य विज्ञान की कुंजी के साथ स्वर्ग के द्वार को फिर से खोल देगा, जिसके बारे में मनुष्य का मानना है कि वो बंद थे, और वो खुद को बेदाग, ईमानदार, शुद्ध और स्वतंत्र पाएगा। अब मैं मेरी बिक्री द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है, प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारपुकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।